Matèria.
वाणी बाप के पास आते हो ना, समझते हो हम लोग शिव बाबा के पास जाते हो, ये भी जानते हो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। सिर्फ आत्माओं का बाप है, जीव आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। ये भी बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, परम पिता, परम टीचर, परम सद्गुरु, और उसे एक सुप्रीम को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं ना, जो चीज नजरों से देखी जाती है वो याद तो आती है ना। गायन भी है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सदगुरु, उनका भी अर्थ चाहिए कि नजर से निहाल किसको किया। जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि वो सर्व का सदगति जाता है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। तो अभी नजर किसकी है, क्या ये आंखों की नजर है? नहीं, ये तो तीसरी आंख मिलती है ज्ञान से, ज्ञान की तीसरी आंख से तुम सुप्रीम सोल, सुप्रीम का, सुप्रीम टीचर को देख सकते हो। इन आंखों से नहीं देख सकते, ये आंखें तो विनाशी हैं। तुम अविनाशी ज्ञान के तीसरे नेत्र से अविनाशी बाप को देखते हो। जिसे आत्मा जानती है, ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि बच्चे माँ में एकम याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो, शरीर को नहीं आत्माओं को समझाते। आत्मा ही पतितम उपदान बनी है। बाप कहते हैं अभी ये तुम्हारा 84वां जन्म पूरा होता है, ये नाटक पूरा होता है और पूरा होना भी चाहिए जरूर। ये दुनिया हर कल्प पुरानी से नहीं बनती है, नई सो पुरानी होती है। नाम भी अलग अलग है, नई दुनिया का नाम है सत्य युग और पुरानी दुनिया का नाम है कलह कलेश का युग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए, अभी कलयुग में तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। अभी बाप को याद करो तो निहाल हो जावेंगे। और ये बात बाप सन्मुख कहते हैं, नजरों से निहार होने की बात सन्मुख की है। कहते हैं मेरे को याद करो, देखो कौन कहते हैं, परम पिता परमात्मा बाप कहते हैं। बच्चे आत्मा मां आत्मा अभिमानी बनो, ये अभिमानी ना बनो, आत्मा अभिमानी बन मेरे में तुम नजर लगाओ, मैं तेरे में नजर लगाऊं और तुम मेरे में नजर लगाओ, तो नजरों से निहाल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, फिर कोई पाठ रिपीट करने 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते सीढ़ी उतरते उतरते हमारी आत्मा पत्य बनी। अभी आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा, अभी कहेंगे तुम निहाल नहीं हो कंगाल हो, निहाल कैसे बनेंगे? नजरों से निहाल ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, जिस पर बाप बैठ समझाते हैं। वेदों शास्त्रों चित्रों आदि पर भी समझाते हैं, नए नए चित्र भी बनवाते हैं, जो ज्ञान उनमें है उस पर चित्र बनाते हैं। कैसे बनाती है सो तो बच्चे समझ ले, ये चित्र बनाया है श्रीमत पर, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बने। और हैं सभी मिट्टी पत्थर आदि के, जो चित्र आसुरी मत पर बनाए हैं उनका आप भी संकुच भी नहीं जानते। बाप आकर सभी बच्चों को समझाते हैं, ये पढ़ाई है भगवान वाच, तो भगवान वाच की कालज हो गई, स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है, यहां तुम बच्चे भी जानते हो ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप एक ही बार आकर के ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते, इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ जाती है। रात में चले जाते हैं और ये पढ़ाई पढ़ने से तुम दिन में चले जाते हो। आसुर पढ़ाई से दुर्गति होती है, ईश्वरीय पढ़ाई से सदगति होती है। कहते भी हैं ब्रह्मा का दिल और ब्रह्मा की रात, इस बात का भी तुमको अभी पता पड़ा है। होता है ब्रह्मा का दिल, जब ब्रह्मा के तन में बाप प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा का दिल, और ब्रह्मा जब गायब हो जाता है, प्रवेशता होना बंद हो जाती है, तो ब्रह्मा की रात हो जाती है। पढ़ाई में देखो कितना अंतर है, इसमें तो बाप साफ बात बताते हैं, आत्मा जब पवित्र होगी तब ही दिव्य गुणों की धारणा होगी, शक्तियां धारण कर सकेंगी। कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो फोड़ करके निकल जाता है। ये ज्ञान भी शेरनी का दूध है, तुम अच्छे जानते हो हम अभी सोने का बर्तन बन रहे हैं। हमारी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन रहा है, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण करके बनना है। 24 कैरेट सोना बनना है, सोना पहले 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट का हो गया। आत्मा की ज्योति जगी हुई थी, वो बुझ गई है, एकदम सारी ज्योति नहीं बुझ जाती, कुछ न कुछ थोड़ा रहता है। जैसे कोई मरते हैं तो उनके लिए दीवा जलाते हैं ना, कहीं दीवा बुझ न जाए। यहां शूटिंग पीरियड में भी बहुत मरते रहते हैं, अभी अभी बाप के बने हैं निश्चय बुझते हुए। बाप कहते हैं याद का घृत दीवे में रोज डालते रहो, ज्ञान की बात ही डालते रहो, ऐसा न हो ये दीवा बुझ जाए। तो रोज मुरली सुननी चाहिए ना, भक्ति मार्ग में फिर घृत डालते रहते, इससे ज्योति जगी रहे। वो तो अल्पकाल की बात, ये है बेहद की बात। तुम आत्माओं की भी ज्योति जगी हुई है, ज्योति जगी हुई वालों में और बुझी हुई वालों में बहुत फर्क होता है। जिनकी ज्योति जगी हुई होगी उनकी निशानी क्या होगी, उनकी निशानी होगी वो औरों की ज्योति जगाते रहेंगे, और जिनकी ज्योति बुझी हुई है वो औरों की ज्योति कैसे जगावेंगे। ज्योति कैसे जगे, कैसे पद पाया, वो बाप बैठ बतला गए। बच्चों को कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी रीति याद करेंगे मैं भी उनको याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं, बरोबर नजर से निहाल करने वाला बाप स्वामी है, इनकी आत्मा भी निहाल हो जाती है, इनकी ब्रह्मा बाबा की। जैसे तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी वैसे इनकी भी ज्योति बुझ गई थी। ज्योति बुझते बुझते लीक जाकर रहती है, इसकी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की है। तुम सभी परवाने हो, उनको समाधि कहते हैं। कोई तो परवाने फेरी पहनने के लिए आते हैं, और कोई तो अच्छी रीति पहचान लेते हैं और फिदा हो जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। दुनिया से, दुनिया के देह के संबंधों से अपने को मार देते हैं। पांच पांच आसक्ति वाली जो दूसरे थी, कोई ऐसे परवाने होते हैं जो आते हैं और फेरी पहन के चले जाते हैं। पता नहीं कब आवेंगे, चले जाती हूँ तो ये सब संगम युग का सारा दर्ज है। तीन तरह के परवाने हैं, एक आते हैं वक्रोद्दान महाकल्याण, तुरंत स्वाहा हो जाते हैं। दूसरे आते हैं फेरी पहन करके चले जाते हैं, चक्कर काट के, चक्कर काटने वाले। और तीसरे आते तो हैं फिर दोबारा कभी आते हुए देखे नहीं जाते, गए तो गए। बाप तो एक ही बार आकर तुमको वर्षा देकर जाते, बेहद का बाप सिर्फ बेहद का वर्षा देंगे ना, हद का वर्षा तो नहीं देंगे। ये तो गायन भी है, किस पीढ़ी से तुम वर्षा कौन देते, भगवान रचयिता ही वर्षा देते हैं, रचना को याद भी उनको करते हैं। कोई बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है, भल तुमको किसको स्वामी कहते हो, सदगुरु भी कोई को कहते होंगे, परंतु सत्य तो एक ही बात है, सत्य माना ही ट्रुथ। और ट्रुथ हमेशा गॉड को कहा जाता है, मनुष्य मात्र कोई ट्रुथ नहीं हो सकता। सदैव सच्चा हो ही नहीं सकता, सदैव सच्चा तो एक सदाशिव ही है। वो सत्य शिव आकर के क्या करते हैं, वो ही आकर के पुरानी दुनिया को, झूठ खंड को सच खंड बनाई देती, कली की दुनिया को पलट करके सत्य की दुनिया बनाई देती। दूसरा तो कोई बनाए नहीं सकता। आते तो हैं बड़े बड़े महान, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती। जो सच खंड था वही अभी झूठ खंड बन गया है। अभी सच खंड में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सच खंड था अभी नहीं है, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। जो सच खंड था तो बाकी इतने सब खंड थे नहीं, एक ही सच खंड था, और ये भारत ही सच खंड था, और दूसरे धर्म खंड थे ही नहीं, वहां ये सभी धर्म खंड होते ही नहीं, ये सभी पीछे आए हैं। सच खंड का तो किसी को पता ही नहीं है, बाकी जो अभी खंड है उनका तो सभी को मालूम है। अपने अपने धर्म के स्थापक को भी जानते हैं, बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी को और ऐसे संगम की ब्राह्मण कुल को कोई जानते ही नहीं है। ये तीन वंश बाप आकर के स्थापन करते हैं, ब्राह्मण वंश, सूर्य वंश और चंद्रवंश। प्रजापिता ब्रह्मा को भी कोई नहीं जानते हैं, शास्त्रों में नाम लिख दिया है प्रजापति, वो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं। परंतु बाप समझाते हैं वो ब्रह्मा की औलाद कहां है, ब्रह्मा मुखवंशावली कहां है। ब्रह्मा मुखवंशावली तो उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से भगवान ने आकर जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान को सुनकर के अपने जीवन को पलटाते हैं, तो सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। कोकमांसावली ब्राह्मण थोड़े ही है, वो तो कोकमांसावली ब्राह्मण है और तुम वो मुखमांसावली ब्राह्मण। वो कोक में खेलते हैं, कोक माने गोद, उन्हें गोद ही याद आती रहती है, वो ब्रह्मा की गोद में खेलते, वो बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में खेलते, उम्रादे के गोद में भी खेलने वाले हुए, परंतु वो सब कुक को याद करने वाले। तुम हो मुखवंशावली ब्राह्मण, क्योंकि तुम मुख से सुनी हुई बातों पर ध्यान देते हो, तुमको गोद याद नहीं आती। वो मुखवंशावली है अपवित्र, देह को याद करने वाले हैं, और तुम तो ज्ञान की औलाद हो, तो मुखवंशावली पवित्र हो, तुम मुखवंशावली बन फिर तुम छीसी दुनिया रावण राज से चले जाते हो, क्योंकि वहां तो रावण राज होता ही नहीं है। अभी तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते ही है वॉइसलेस वर्ल्ड, वॉइस माने विकार, विकारों का वहां नाम निशान नहीं होता, विकार माने विपरीत कार्य, जो सीमत के अनुकूल काम है वो ही वहां करते हैं, वहां तो नई दुनिया होती है, कोई फिर पुरानी हो जाती है, कैसे होती है ये भी तुम जानगे, दूसरा तो कोई की बुद्धि में आता ही नहीं है, लाखों वर्ष की कोई बात बुद्धि में थोड़ी बैठेगी, ये तो थोड़े समय की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, वो भक्ति मार्ग की लंबी चौड़ी झूठे गपूड़े, बाप आकर कंप्लेंट करते हैं, मैं आता ही तब हूं जब खास भारत में ग्लानी होती, दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं है, निराकार बाप क्या चीज है, वो तो बड़ा बड़ा लिंग बना करके रख दिए, अब मैं इतना बड़ा हूं क्या, लिंग क्यों बना के रख दिए। बच्चों को समझाया है आत्माएं तो सब बिंदी मिसल होती है, कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं होती है। हाँ, जिस तन में आता हूं वो तन बड़ा होता है, बड़ा का मतलब कोई आकार में भी बड़ा नहीं, सब मनुष्य 5-6 फुट के ही होते, देवताएं भी 5-6 फुट के होते, मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, बड़े रूप में प्रवेश करता हूं, वो बड़ा रूप पाप की याद में रहकर अपनी कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं, इसलिए उस स्वरूप की यादगार में कर्मेंद्रियों को निकाल दिया। आदमी हो उसकी नाक आंख कान मुंह वाले सर को निकाल दिया जाए, हाथों को निकाल दिया जाए, टांगों को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा, लिंग ही तो बचेगा, तो लिंग दिखाई दिया। बच्चों को समझाया है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, साइज छोटा बड़ा नहीं होता है आत्मा का, जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। हाँ, वो है परम सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम अर्थात जो सदैव पवित्र होने भी गए एवर प्योर है ना, तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी परंतु तुम एवर प्योर नहीं हो, सदाकाल पवित्र नहीं रहती हो, तुम संघ के रंग में आ जाती हो। मैं कभी संघ के रंग में नहीं आता हूं, पहले निर्विकारी दुनिया में तुम निर्विकारी थी, जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, फिर जरूर वह पुरानी होती है क्योंकि सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती जाती है, आत्मा की ज्योति कम होती जाती है, दो कला कम चंद्रवंशी जाती है, दुनिया पुरानी बनती जाती है, पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाइप्लॉग, उन धर्म खंडों के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। परंतु तुम मिक्सअप हो जाते हो उन धर्म वालों के साथ, ब्रह्म अपने अनुसार जो कुछ होता है वो विरोध, जैसे एक आया और कितनों को बुद्धि धर्म में ले गया, धर्म ही बदल दिया, हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो जाते हैं, कर्म इंद्रियों से भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्ट कर धर्म कर्म करते हैं तो धारणाएं भी भ्रष्ट हो जाती, धर्म भ्रष्ट हो गई ना, वाम मारते चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भले गए होंगे परंतु कोई को ख्याल नहीं आता है, खुद भिखारी है तो उन लोग भी भिखारी के रूप में देखते हैं, कोई को पता नहीं पड़ता है ये भिखारी चित्र जगन्नाथ के मंदिर में क्यों बनाए हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये देवताएं फिर वाम मार्ग में गई, उनके चित्र बैठ बनाए, देवी देवता नाम तो बहुत अच्छा है और हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, वो फिर अपन को हिंदू कह देते हैं, इतनी भूल है, इसलिए बाप कहते हैं ज्यादा आदाय धर्म से, बाप तो भारत में ही आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में आता हूं, ये तो है ही भारत, हिंदुस्तान वह हिंदू धर्म नहीं है, ये मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है और ये भी ड्रामा में नूंद है, अच्छी रीति ये ड्रामा समझना चाहिए, ये भी नॉलेज है, पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन गए, फिर उनको आगे कहते हैं आप संपूर्ण, उन्हें के आगे बोलते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी, ऐसे और कोई खंड वाले नहीं कहेंगे अपन को कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं, अपनी ग्लानी अपने आप मुख से व्यक्त करते हैं, 5 मई 1968 की वाणी करती सर, कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और खंडों में ऐसे कहते कब सुना नहीं होगा, सिख लोग हैं बल ग्रंथ के आगे बैठते हैं परंतु ऐसे नहीं कहेंगे, नानक निर्विकारी है हम विकारी हैं, ये नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो कंगन है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु फिर भी विकार बिगड़ तो कोई रह नहीं सकती, یہ جھوٹی نشانیاں دے دی ہیں، جیسے ہندوؤں نے جنیؤ پہنا ہے، وہ بھی واستو میں پوتا کی نشانی ہے، آگے جنیؤ بہت پہن دیتے ہیں، بہت بہت پرکار کی رسم رواج ہے، آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے، دھرم وغیرہ کچھ بھی چلتا تھوڑی، دھرم ہی سارا چٹ کھاتے میں چلا گیا، دیوی دیوتا دھرم والے ہی ہندو بن گئے، کہ ایک ہی بھارت ہے جو سبھی دھرموں کو چھٹی دیتے ہیں، کیونکہ اپنے کو دھرم کو اپنے کو اور دھرم کو تو جانتے ہی نہیں، واستو میں ہندو دھرم تو ہے ہی نہیں، تو دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے، پاپٹ سمجھاتے ہیں یہ پرانی دنیا ہے، منشیوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، کسی کے دھیان میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ بھکتی مارگ چل رہا ہے، کہا جاتا ہے بھکتی کل جان کنٹ ستیگ میں، کہا جاتا ہے وہاں جان کنٹ کی پرارتھ چلتی ہے، کیونکہ سمپورن ستیگ میں پرکار نروکاری ہوتی ہے، یہاں تو کوئی سمپورن نروکاری ہو ہی نہیں سکتا، دیوتاؤں کو کہا جاتا ہے سمپورن نروکاری، لیش ماتر بھی وکار نہیں ہوتی، اور کلیگ میں تو سمپورن نروکاری ہو ہی نہیں سکتا، سنیاسیوں کا دھرم ہی الگ ہے، وہ تو ہے ہی نوتی مارگ والے، نوتی مارگ کی استھاپنا تو باپ ہی کرتے ہیں، یہ نوتی مارگ استھاپن کرنے والے نوتی مارگ کی استھاپنا کیسے کریں گے، ہاں باقی یعنی پروتی مارگ والوں کے گرو بن کر کے بیٹھتے ہیں نوتی مارگ والے، انہوں سے انہوں کا جو جاستی ہو گیا، کیونکہ سنیاسی ہے نا، کچھ نہ کچھ پوترتا دھارن کرتے ہیں، سنسکرت بھی پڑھتے ہیں، وید اپنیشد آدی بھی پڑھتے ہیں، پاپ کہتے ہیں یہ ہے سبھی شاستروں کا بھوسا، کیونکہ شاستر تو انیکوں منشیوں کے دوارا لکھی گئی، تنڈے تنڈے متے بھنا، ज्ञान तो एक बाप से आता है, ये बाप ने कहा है तुमने जो कुछ भी इन शास्त्रों में पढ़ा है, इन सभी शास्त्रों के पढ़ने आदि से मैं तुमको थोड़े मिलता हूं, मैं तो जब आता हूं सभी को निहार करके नजरों से ले जाता हूं, जैन भी है गजर से निहाल स्वामी किंदा प्यारा सतगुरु, تو باپ تم سے پوچھتے ہیں تم یہاں کیوں آئے ہو، نظروں سے نہار ہونے کے لیے آئے ہو، وشو کا مالک بننے کے لیے آئے ہو، تو باپ کو یاد کرو تو نہار ہو جائیں گے، ایسے کب کوئی کہیں گے نہیں کہ ایسا کرنے سے تم یہ بن جاؤ لکشمی نارائن بن جاؤ، یہ تو باپ ہی آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نرکو نارائن بناتا ہوں، اور تم کو بھی نرسی نارائن اور ناری سے لکشمی بننا ہے، یہ لکشمی نارائن کیسے بنے کوئی کو پتا نہیں، بچوں کو تو سبھی کچھ بتلاتے ہیں، یہی لکشمی نارائن 84 جنم لے کر پتی تو بنے، پھر تم کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، بنانے کے لیے بھی آیا ہوں، باپ تو بڑے سی، باپ اپنا پریچے بھی دیتے، نظر سے نہار کرنے والا ہے، یہ کس کے لیے کہیں گے، وہ گرو لوگ تو ڈھیر کے ڈھیر ہو گئے، یہ ابلائیں ماتائیں بھی کتنی بھولی ہیں، باپ کہتے ہیں تم سبھی بھولے ناتھ کے بچے ہو، بھولے ناتھ کوئی شنکر کو نہیں کہا جاتا ہے، شنکر کی تو بات ہی نہیں ہے، کون ہے بھولے ناتھ، शिव बाबा। कभी ऐसे नहीं कह देना चाहिए शंकर भोलेनाथ, क्या कहा जाता है, कहते भी हैं शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोले भाले। शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में, और भोले पहले और भाले बाद में, तो भाला कौन हुआ और भोला कौन हुआ, भोला हुआ शिव, और भाला के रूप में कांटा लगाने वाला हुआ शंकर। सारी दुनिया को खलास कर देते उनको भोला कहेंगे, आंखें खोली और विनाश हो जाए, इससे तो अच्छा ये सोते ही रहे। अगर इनकी आंख खुल गई तो सारी दुनिया का संहार हो जाए। तो ये भोला बना है क्या, ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं कि बाप कहेंगे कि विनाश करो, अगर बाप कहें तो ये भी पाप हो जावे, बाप तो कब ऐसा काम कर ही नहीं सकते। विनाश तो कोई चीज से ही होगा ना, अपने आप विनाश कैसे होगा, तो बाप ऐसा डायरेक्शन नहीं देते कि विनाश करो। ये तो सभी साइंस निकालते रहते हैं, ये भी आसुरी विचार है उन्हों का, एटम बम बनाओ दुनिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए। अब बाप तो बताते हैं कि अपने कुल का आप ही विनाश करते हैं, बांधे हुए हैं, ये छोड़ नहीं सकते बनाना। उनों की भी ये बम पानी बनाने की बड़ी भारी आजीविका है, बहुत पैसे कमाते हैं, और नाम कितना होगा, एरोप्लेन में मून आदि में जाते रहते, फायदा तो चाहे मंगल में जाए, चाहे मून में जाए, चंद्रमा में जाए, फायदा तो कुछ भी होता नहीं। तुम अच्छे जानते हो, देखते हो, बाप भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। इस हालत में तो आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों, तुम भी बाप से नजर लगाओ, ये आत्मा अपने बाप को याद करो तो तुम यार नजरों से निहाल हो जाएंगे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं, जानता हूं ये याद करने वाले मेरे ही बच्चे हैं, और मैं माता मां को ही याद करता हूं। जो उनको जास्ती याद करते हैं वो भी याद करते हैं, याद से याद मिलती है तो उनको बल मिल जाता है। यहां सभी बैठे हैं जो निहाल हो जाएंगे वो जरूर है लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, कोई राजा बनेगा, कोई साहूकार प्रजा बनेगा। बाप तो सभी की चरण को जानते, बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा उनको कैसे याद करेंगे। गैंग भी है याद करो तो मैं भी याद करूंगा, और संग तोड़ो एक संग जोड़ो, एक है निराकार, आत्मा भी तुम्हारी निराकार है। अभी निराकार बाप कहते हैं एक को याद करो, तुम खुद ही कहते हो पति तो पाऊ उसको याद करो, पति को याद करो या पावन को याद करो या दोनों को याद करो, पति तो पावन बाप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पति तो पावन क्यों कहते हैं, दोनों क्यों कहते हैं उसको, पावन बाप कहे ना, पतितों को पावन न बना ले तो उसे याद कौन करेगा, इसलिए पावन के साथ पतित भी लगा हुआ है। और जिस पतित में आते हैं वो दुनिया का बड़े से बड़ा पतित है, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उनको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूं। पतित के बगैर पावन भी पास सिद्ध नहीं होता, तो ये किसको कहा पतित पावन? क्या ब्रह्मा को कहा? नहीं। विष्णु को कहा? विष्णु को भी नहीं कहा। अच्छा, शंकर को कहा पतित पावन? किसको कहा? शिव बाबा को कहा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। तो ब्रह्मा हुआ साकार और उसमें शिव हुआ निराकार, तो पतित पावन हो गया ना? क्यों? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है ना? तो ब्रह्मा हुआ साकार, उसमें शिव हुआ निराकार, तो पतित पावन हो गया ना? क्यों? अगर ब्रह्मा के द्वारा पतित पावन शिव हुआ होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मूर्तियां होती, उनकी मंदिरों में पूजा होती, लेकिन ये कार्य होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा भल मुरली चलाई, लेकिन उस मुरली को ब्रह्मा ने खुद ही समझा नहीं, उसके मर्म को जाना नहीं, उन्होंने बाप के साकार और निराकार रूप को पहचाना नहीं। तो न ब्रह्मा को कहेंगे, न विष्णु को कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। पावन तो एक ही स्वरूप है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। क्या कारण है? एक होता है हद का पुनर्जन्म और एक होता है बेहद का पुनर्जन्म। बेहद का पुनर्जन्म क्या होता है? एक बार बाप के ऊपर निश्चय हो जाए, एक बार बाप का बच्चा बन जाए, तो फिर कभी अनिश्चय पैदा न हो। ऐसी शख्सियत इस संसार में जो भी हो, कि एक बार बाप को पहचान लिया तो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने। उसी के द्वारा बाप पतित पावन मन संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। वो पावन ही है, उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान, अथॉरिटी भी है। इस अथॉरिटी शब्द का भी कोई अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं ही सृष्टि के आदि मध्यंत को जानता हूं, और जो भी शास्त्रार्थ हैं सभी को जानता हूं। 5 मई 1968 वाणी का चौथा पेज। ये सन्यासी लोग फिर अपन को अथॉरिटी समझते हैं, परंतु वो तो सिर्फ शास्त्रों की अथॉरिटी है, इसलिए उनको टाइटल्स भी मिलते हैं। बाप को तो पहले से ही टाइटल मिला, और वह कोई पढ़कर के थोड़े ही टाइटल लेते हैं। सर्वशक्तिमान का टाइटल उनका तो है ही, उनको समझाते हैं। ये कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े है क्या? भक्तिमार्ग की कितनी सामग्री है, ढेर के ढेर शास्त्र। बाप पर को बैठ बताते हैं, कितना तीर्थों आदि पर, मेलों आदि पर जाते हैं, मनुष्य कितना दुखी होते हैं, तंग होते हैं, और बाबा तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकल्प विनाश हो जाएंगे, तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। सतोप्रधान नई शक्ति थी, फिर उनको तमोप्रधान बन रही है। कोई भी चीज सदैव के लिए तो रहती नहीं है, एक जैसे रूप बदलता जरूर है। हर चीज पहले सतोप्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं और फिर कहते हैं ये बातें औरों को भी समझो, एक बात को याद करो, भाव और संग तोड़ एक को याद करो। इतने संबंधी यादें होती हैं, कोई को भी याद नहीं करो, इस शरीर को भी याद नहीं करो, तुम रूहानी बच्चे हो तो एक रूहानी बाप को याद करो, यही तुम्हारी मेहनत। फिर कोई नाम रूप तुमको याद नहीं आएगा और कहीं भी तुम फंसेंगे भी नहीं। अपन को देह समझने से फंस मरते हो, बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं, कहते हैं ये सभी का अंतिम जन्म है, इस मृत्युलोक में ये सभी का अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया सो अब नई बनने वाली, नई सृष्टि में ये देवता ही होते हैं। ये चीज में होता है ना, ये भी कब था वो कोई जानते नहीं, और किसने स्थापन किया कुछ भी याद नहीं, कुछ भूल गए। बाप कहते हैं तुम सभी एक्टर्स हो, एक्टर्स को ड्रामा का पता होना चाहिए, तुमको भी ये 84 जन्मों वाले ड्रामा का पता होना चाहिए कि तुमने 84 में चक्र में कैसे कैसे पार्ट बजाए। वेद का बाप आकर तुम बच्चों को ये ड्रामा का सारा पार्ट समझाते हो, अभी उस पार्ट को धारण करो ना, और फिर हरेक अपने से पूछे कि हमको कहाँ तक 84 जन्मों की धारणा है, धारण करके फिर औरों को धारण करना है। अपने अंदर पूछना है, मैं बाबा को सारा दिन में कितना ही याद करता हूँ, बाबा जिससे हमको विश्व की बादशाही मिलती है उनको तो श्वासों श्वास याद करना चाहिए, अगर उनको याद नहीं करेंगे तो बाप से बसा कैसे ले सकेंगे। रोज रात्रि को अपना पोता में निकाल दो, व्यापारी हो, बहुत व्यापारी लोग रोज रात को सारा पोता में निकालते, कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, तो बाप बच्चों को राय बहुत अच्छी देते हैं, जिनसे पूछो हम कितना ही याद में रहते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उस बाप ने कहा है मुझे याद करो, उसका कहना नहीं मानते हो तो वो या ना फरमान बरदार करें, आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अवज्ञाकारी होंगे, नतीजा क्या होगा, ना पास हो जाएंगे। अभी नहीं समझते हो तो आगे चल करके समझ लेंगे, आगे चल करके करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी अवस्था कैसे समझ सकेंगे। तो समझना अच्छा ही है, पाप किया हुआ होगा तो अटेंशन रहेगा, पाप कहते हैं किसको दुख देते हो तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरों को दुख देने से तुम मेरी ग्लानी कराते हो, मैं तो सुख का सागर और बच्चे दुख देने वाले बने, तो बाप के बच्चे कहे जाने नहीं क्या, तो जरूर 100 गुना दंड हो जाते। अगर बाप को सुनावेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता जाएगा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। ये सभी बातें बाप भिन्न भिन्न रीत से समझाते हैं, मोस्ट बिलीविड बाप है, उनको याद करने तुम्हारी फिक्र विनाश होंगी, बाप तुमको याद करना कैसे अच्छी रीति सिखाती है। चार्ट रखो, आज के दिन मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मनसा से वाचा से कर्मणा से कोई भी विकार जब आता है तो देह अभिमान में आता है, देह अभिमानी होकर के रहे तो कभी कोई विकार नहीं आवेगा। ये सभी बातें समझने की है, रोज रोज बाप समझाते, परिवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे पुरुषार्थ करते रहते, कल पहले ये तो कुछ भी नहीं किया था, ये भी कुछ नहीं जानता था, अभी देखो सब जान गया, यही फिर सभी से पावन बन, फिर सभी से पतित बनते हैं। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं वानप्रस्थ अवस्था में आकर प्रवेश करता हूं, वाणी से परे जाने के लिए गुरु करते हैं ना, परंतु वह सच्चा गुरु तो है ही नहीं। वाणी से परे जाने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हो, और वाणी से परे तो सभी को जाना ही है। कोई अपना पुरुषार्थ करके स्वेच्छा से जानेंगे और कोई जबरन जानेंगे। नंबर बार आ रहे एक पुरुषार्थ करते समझते हैं हम पढ़ करके अच्छा पद पाए। आप कहते हैं ये सारी दुनिया बाणप्रस्थी बनेगी। पुरुषार्थ कोई करे या न करे और बाणप्रस्थी तो जरूर बनना पड़ेगा। वो सच्चे सच्चे बाणप्रस्थी सारी दुनिया सभी कुछ बदल जाएगी। अच्छा नीचे नीचे से कितने बच्चों को तिरुवानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नीचे नीचे रुवानी बच्चों को तिरुवानी बाप का
Thank you.